गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा के स्वरूप श्री 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 प्रेमपुरी जी महाराज को प्रणाम। पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। दूसरे श्लोक को पुनः पढ़ेंगे। यम संन्यासमिति प्राहुः बोलिए यम सन योगं तं विद्धि पांडव नयसन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। संकल्प क्या है हमारे मन में? इच्छा हो तभी संकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। इच्छा संकल्प की जननी है। कृष्ण कहते हैं कि सब संकल्प को छोड़ो। जो संकल्प को छोड़ दे वही योगी है। जो इच्छाओं को छोड़े वो सन्यासी है। और जो सन्यासी है तो योगी है। और योगी है वह सन्यासी है। तो योगी और सन्यासी के लिए इच्छाएं और संकल्प दोनों से पृथक होना चाहिए। कोई आया देखभाल अच्छे से करो, नहीं आया उसके लिए कभी चिंता ना करो। क्योंकि जब हम इच्छा करते हैं तो इच्छा न केवल संकल्प की जननी है किंतु इच्छा अहंकार की भी जननी है। संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यते। रावण के पास आकर के जब सुरपणका ने कहा कि दो युवक के साथ में एक सुंदरी स्त्री है, सुरपणका ने दो सुंदर युवक नहीं कहा। वैसे वो सुंदर युवकों से ही मोहित होकर के गई थी, किंतु रावण के लिए कहती है सुंदरी स्त्री। अब सुंदरी स्त्री की इच्छा का बीज रावण के मन में एक डाल दिया। अभी इस सुंदरी स्त्री को लेने जाऊं तो कैसे जाऊं, एक इच्छा प्रकट हुई। संकल्प तो रावण के मन में भी बहुत थे किंतु वो संकल्प के बीज अंकुरित ही नहीं हुए। उनके पीछे अहंकार नहीं था। क्या संकल्प था? श्रीलंका के चारों ओर जो खारे जल का, नमकीन जल का जो समुद्र है उसको मैं क्षीर सागर करूंगा। श्रीलंका से इंद्र के नंदनवन तक ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड बनाऊंगा। वाल्मीकि रामायण का कहना है नहीं स्वस्व उपासित को ही पुरुषस्य सो वेद। नहीं स्वस्व जो कल करता हूं कल करता हूं, वो संकल्प को बोलते हैं पंजाबी में माड़ा मोटा है, वो ढीला डाला है। देखेंगे सोचेंगे करेंगे, गिरीश भाई से कहे जोशू जोवाश है, ये ढीला डाला है। नहीं जी अभी क्या है, अभी करता हूं उसके साथ में करके रखूंगा देख लो। तो ये संकल्प के पीछे अहंकार लगा हुआ है। तो इंद्र के रावण के मन में दो इच्छा थी कि मैं क्षीर सागर बनाऊं क्षार सागर को और नंदन वन तक ग्रांड कल करेंगे, कभी नहीं किया। मगर जिस दिन उसके मन में एक इच्छा का बीज आया कि एक सुंदरी स्त्री है, कृत संकल्प होकर के उसको उठा करके लाया। पहले इच्छा, फिर कृत संकल्प, फिर तुम कैसा भी करो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमसे ही विवाह करूंगा, ये अहंकार। तो कृष्ण कहते हैं कि निष्क्रिय पड़ी हुई इच्छाएं हैं, जिनके पीछे संकल्प ना हो वो सपने बनकर के उड़ जाती है। किंतु संकल्प का अर्थ है इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप का पूरा दाव लगा देना। कार्यम साधयामी देहम पातयामी, मैं अपना नाश कर लूंगा किंतु तेरा तो नाश करके रहूंगा। ये एक जो अहं है, श्री कृष्ण सावधान करते हैं, कहते कि मानव जीवन के उत्कर्ष और अभ्युदय के लिए ये ऐसी इच्छाएं, ऐसे संकल्प, ऐसे अहंकार। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग है, वहां आसुरी संपत्ति योग कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मन काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात एतत् त्रयम् त्रिजे। और कहा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशेता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्य सूयकाः। ये अहंकार है, बल है, दर्प है, काम है। एक सीधी बात को समझ लीजिए, एक बहुत सीधी बात। सूरदास जी का नाम क्या? सूरदास, रैदास, नानक दास, तुलसीदास, कबीर दास, रामदास, ये सारे दास हैं। और हमारे त्यागराज जी ने कहा भृत्यस्य 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 भृत्य, मैं तुम्हारे हे प्रभु मैं तुम्हारे दास के दास के दास का दास। और गुरु नानक देव जी कहते हैं तू ठाकुर तुम पे अरदास, नानक दास। और उतनी बात नहीं कहा नानक ते तोरे चाकरांदी पाखाक, नानक है वो ईश्वर तेरे चाकर के जूते की राख है। ये इतनी विनम्रता है क्या? पूछो आत्म संयम का हेतु क्या है? हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज कहते थे टू बी एन ए गुड डिसाइपल बी ए डोरमेट एट द डोर स्टेप ऑफ द मास्टर। संतों के गुरु के दरवाजे के बाहर वो पायदान कैसा होता है जिसमें संत और संत के भगत तमाम लोग आने जाने के समय में पांव रगड़ के पूछ के जाए, ऐसा जो बन के रहेगा वही प्रभु के दरवाजे को प्राप्त होगा। अपने जीवन को गुरुवाणी कहती है निवा होके चल दे निवी अनु रब मिलदा, निवी होई मीरा बाई ते झेल प्यारा भर के खाई ओनू मिलिया ते कृष्ण मुरार। गुरुवाणी ने क्या कहा? जितना विनम्र बन के चल, जितना विनम्र बन के चलोगे उतने ही तुम प्रभु के निकट चले जाओगे। मीराबाई ने जहर क्यों पिया? पूरा भरोसा था समर्पण के, कृष्ण है वही हमारे जीवन के एक आधार है, वही हमारे जीवन की बागडोर है। तो क्या होता है कि इच्छा के साथ अहंकार संयुक्त होता है तो संकल्प निर्मित हो जाता है। अहंकार मैं इस इच्छा को, मैं आई इस इच्छा को पकड़ लेता है। देखिए हमारे यहां जो कुछ संत हुए इनमें एक बहुत ही पवित्र नाम है रमण महर्षि जी, दूसरा ऐसा दिव्य नाम है शिशी मां आनंदमयी माता, अनंत आनंद जी नहीं आनंदमयी माता। ये दोनों महापुरुषों ने कभी अपने आप को मैं हम नहीं कहा, ये महात्मा लोग हैं हम गए थे ऐसा बोलेंगे, महात्मा लोग मैं नहीं बोलते हम कहते हैं। इन दोनों ने कभी मैं नहीं कहा ये शरीर दिस बॉडी ऐसे कहा। बड़ा मुश्किल है, हमारे गुजरात में एक बहुत अच्छे गायक हुए, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उच्च कोटि के साधक थे, बचपन से उन्होंने कभी अपने आप को मैं नहीं कहा, हूं गयो हो तो मने मड़ियो हूं आविश, कभी नहीं कहा। वो कहते थे, उनका नाम था रास बिहारी देसाई। तो रास बिहारी देसाई है, वो हमेशा उनको राज भाई ने तमारो पत्र मळ्यो छे, राज भाई चौकस आवशे, राज भाई ने गम्यो, राज भाई को आपका पत्र प्राप्त हुआ है, राज भाई को बड़ा अच्छा लगा, राज भाई जरूर आएंगे। तो ये अपने आप को जो तृतीय पुरुष प्रथम पुरुष ने कहना, वो कितनी बड़ी बात है। इतनी सरलता से अपने आप को शून्य कर देना, ये शून्य जो है वही ये आत्म संयम की साधना की चाबी। जब अपने आप को हम शून्य कर दें, देखिए एक यहां पर नित्से नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, तो नित्से कहते हैं कि संकल्प तो होना चाहिए, बिना संकल्प के कुछ कार्य नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी कहते हैं कि संकल्पवान बनो, कोई बच्चा है पढ़ता नहीं है तो माता पिता को तेरा संकल्प कर, क्यों नहीं कर सकता है, हाँ पानी ग्रहण कर, आपने पानी ले। तो ये निश्चय की सोच, स्वामी विवेकानंद जी की सोच अच्छी है अपनी जगह में, कृष्ण की सोच उनसे पूरी अलग है। वो कहते हैं कि ये जो हम संकल्प करते हैं वो अपने अहंकार के साथ करते हैं, करूंगा जरूर करूंगा, होके रहूंगा, इस बार पास करके दिखाऊंगा। तो ये अपने साथ अहंकार जुड़ा हुआ है, ये पूरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डुबा भी देगा। कृष्ण का संकल्प अलग है, कृष्ण की सोच ही अलग है। कृष्ण कहते हैं कि तू अपने आप को विनम्र करके जा। निश्चय कहते हैं युद्ध कर, क्यों करना है युद्ध, इसलिए मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, दूसरे को नाश करके विनाश करके आऊंगा। ये जो बड़े बड़े लोग जो हैं, ये पॉलिटिशियन लोग जो सभाएं करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, इधर से उधर से ट्रक भर के लोगों को ले आते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को एक एक ट्रक में भेड़ बकरियों के जैसे ले आते हैं, उनको 2 सैंडविच, 1 समोसा, 1 गुलाब जामुन और 1 पानी का पाउच और 100 रूपया मिलता है। खाने का पहले मिल जाता है, 100 रूपया जब ट्रक से उतरते हैं तो 100 रूपया बांटा जाता है। सभाएं जहां पूरी होती है वहां उसके बाद जाके देखो पूरा मैदान है वो हैवमोर के फूड के डब्बे और आपका पेपर और प्लास्टिक के पाउच, पूरा मैदान एक नरक हो जाता है। शक्ति का प्रदर्शन, अहंकार का प्रदर्शन, निश्चय का ये नियम, निश्चय की सोच, निश्चय का विचार है। एक बहुत बड़े एक तत्वचिंतक हुए तो कहते हैं कि युद्ध कर, क्यों, दूसरे का नाश करने के लिए। और ये कृष्ण बोलते हैं युद्ध कर, तेरा धर्म है, इसलिए तो विनम्र बनकर के जा। देखिए बात कीजिए, हमारे दुर्योधन भी भगवान कृष्ण के पास में गए मदद लेने के लिए, सिर के पीछे बैठे, अर्जुन गए तो चरण में बैठे, दुर्योधन अकड़ में आ रहा है, भीष्म पितामह को बना दिया है उन्होंने ये सेनापति, उनको डांट भी रहा है, तुम नहीं लड़ रहे हो हमारी साइड में हो मगर उनका पक्ष करते हो, मारते क्यों नहीं हो। अर्जुन ने पहला तीर क्या मारा, गुरु के चरण में। युधिष्ठिर है, रथ से उतर के आए, प्रणाम करके आए, पांव छू करके आए। ये देखिए दोनों का भेद, जब हम आत्म संयम करते हैं कितने विनम्र बन सकते हैं। आत्म संयम का जो सबसे पहला चरण है, सबसे पहला कि अपने आप को शून्य कर देना। जब तक बीज अपने आप को तोड़ता नहीं है उसमें से अंकुरित होना संभव नहीं है। बीज को अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, बीज टूटेगा नहीं तो अंकुरित होगा नहीं, अंकुरित होगा नहीं तो पनपेगा नहीं। एक अंडा होता है उसकी खोल होती है, खोल के अंदर बिल्कुल नरम नरम एक जीव, एक जान, एक प्राण, एक चेतना, एक दिव्यता, एक औदार्य, एक एक, एक चेतन उसके अंदर भरा हुआ है, किंतु वो कहे खोल छोड़ूंगा ही नहीं, खोल तोड़ूंगा ही नहीं, तो जीव बाहर नहीं आ सकता है। अगर हमें उत्क्रांति करनी है, हमें अभ्युदय करना है, हमें उत्कर्ष करना है, हमें अपनी जीवन की दिशा में आरोहण करना है, तो हमें अपनी खोल को तो तोड़ना ही पड़ेगा, अपने बीज को तोड़ना ही पड़ेगा अंकुरित होने के लिए। ध्यान रहे, ये बीज जो है, ये खोल है, वो बाहर के आवरण नहीं है, वो हमारे अहंकार है। अहंकार क्या होते हैं? एक हम सोचते हैं कि हमारा सेफ्टी मेजर है, अपने आप की सुरक्षा के लिए। क्या बात है, किसकी सुरक्षा है? हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले कौन अपना अहंकार दूर करे, बोले सन्यासी करे। सबसे बड़ा कोई अहंकारी इंसान अगर समाज में है तो सन्यासी है। कहते हैं गिव अप सन्यासी अभिमान, गुरु महाराज ने कहा। फिर कहते हैं गिव अप ब्राह्मण अभिमान। फिर तीसरा कहा गिव अप मेल एंड फीमेल अभिमान। फिर आगे कहा गिव अप डॉक्टर इंजीनियर अभिमान। और बोले कि सरकारी दफ्तरों में सबसे बड़ा अभिमान कौन होता है? तलाटी। कलेक्टर का अभिमान नहीं होता है, उनका जो कचहरी में जो होता है नक्शा लिखने वाला, उसको ज्यादा अहंकार होता है, कलेक्टर से ज्यादा बात करता है। अभिमान त्यागो, सेवा करो, नारायण 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 नारायण। क्या पता है आपको, जगन्नाथ जी महाराज जी की जब स्थापना हुई गजपति महाराज के द्वारा, कोई इतने 750-800 साल के पहले, तो जगन्नाथ जी महाराज ने उनको पूछा, तुम्हें क्या वरमरुही लड़ाचड़ निवास आय ने कहा, वरमरुही तुम्हें क्या वरदान चाहिए? बोले मेरे परिवार में किसी को बेटा ना हो। भगवान ने कहा तथास्तु। तो कहा क्यों तुम ऐसा? बोले कोई तो कभी भविष्य में नहीं कह सकता है मेरे बाप ने ये मंदिर बनाया है, मेरे बाप ने मंदिर बनाया, ऐसा कभी कोई नहीं कह सकता है। और ये एक और नियम कर दे नाथ, अब जब कभी भी मंदिर से बाहर आओ तो जो भी यहां सेवक रहे, प्रमुख सेवक, वो पहले झाड़ू लगाए तब आप बाहर जाए। जगन्नाथ जी मंदिर की यात्रा का नियम है। गजपति महाराज अभी दिव्य देव सिंह है, अभी एक हफ्ते भर के पहले उनकी षष्ठाब्दी पूर्ति हुई, तो वो एक झाड़ू लेकर के भगवान के आगे लगाते हैं कैंकर्यम। कल हम एक बालाजी के मंदिर में गए, वो आपके न्यू पनवेल में, तो एक बहुत बड़े अधिकारी मिले, अकाउंटेंट जनरल महाराष्ट्र के, तो उन्होंने आके प्रणाम किया। वो जूते लेकर के गए, मोजा लेकर के गए, फिर जूता छोड़ के गए, मोजा हाथ में देके गए। बोला आप क्यों करते हो, जहां रखा है हम वहीं पर रखेंगे। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं अवकाश के दिन यहां पर कैंकर्य करने आता हूं। कैंकर्य क्या होता है? दासत्व। गुरुद्वारा में कभी आप जाओ, कभी अमृतसर गुरुद्वारा में चले जाओ, किसी गुरुद्वारा में चले जाओ, रात 2:30 बजे 2:45 बजे तो वहां पर जो महिलाएं रहती हैं वो 6-6 इंच तक सोना पहनी होती है, गले में नाक में कान में ढेरों सोना पहनी है, किंतु लोगों के चप्पलों को जूतों को साफ करती है, और जो टूटा हुआ है तो उनको सिलाई करके देती है, और उनको ब्रश करके पॉलिश करके देती है। अरे बताइए क्या बात है। और वो कोई बड़े से बड़ा कोई सरकारी अधिकारी न मंत्री भी क्यों नहीं है, कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है, कि आपके राष्ट्रपति क्यों नहीं है, अगर उन्होंने कोई द्रोह किया तो गुरुद्वारा कहते हैं एक दिन आकर के जूते साफ करो अमृतसर में। ये सरलता हो सकती है क्या? अपने आप को सोचना चाहिए, हमारे जीवन की दुविधाओं की वजह क्या है, हमारे जीवन के उत्क्रांति में अवरोध क्या है, हमारा अहंकार है। ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल, एज नोबल एज पॉसिबल, जितने सरल बन सकते हो उतना सरल बन के रहो। दास के दास के दास का दास, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जहां बैठावे तिथि ही बैठूं, जो देवे सोई खाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, ये मैं तुम्हारे चरण में दरवाजे में आ जाएंगे। अहंकार के द्वारा किसी ने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है, परमात्मा के द्वार पर खड़े हुए जय विजय ने भी अहंकार किया तो उनको भी 3 जन्म के लिए राक्षस होना पड़ा है। श्रीमद् भागवत जी में बहुत सुंदर प्रकरण, श्री कृष्ण परमात्मा बंसी बजाते हैं, बंसी की धुन करके गोपियां अपना अपना कार्य छोड़ करके चली जाती है। कोई पति की सेवा में थी, कोई बच्चे को स्तनपान करा रही थी, कोई गाय को दूध दो रही थी, कोई गाय को दूध बछड़ों को पिला रही थी, भागवत जी में लिखा है कोई लपसी सेक रही थी, तमाम कार्य को छोड़ करके गोपियां चली। रात ढल चुकी है, जब गोपियां आई तो प्रभु ने पूछा, तुम क्यों आई? आपने बंसी बजा के बुलाए ना? मैं तो बंसी बजाता हूं, बुलाने का क्या मतलब है? जाओ वापस जाओ, अपने माता पिता सास ससुर पति सबकी सेवा करो, जाओ वापस जाओ। अरे कैसे निष्ठुर हो, पहले बुलाते हो कहते हो वापस जाओ। अरे मर्यादा नहीं, क्या मर्यादा नहीं है? हमारे प्राण तुम हो, हमारे प्रियतम तुम हो, हमने इसलिए यहां जन्म लिया है। अच्छा ठीक है रहो। अब कृष्ण है गोपियों के साथ में, वो कदम्ब की छांव में आते हैं। जब आने लगे कदम्ब की छांव में तो गोपियों के मन में अहंकार हो गया। क्या अहंकार हो गया? कहता है जाओ, मगर फिर भी मैं, हमारे बिना तो गुजारा चलता नहीं है। उनके सूक्ष्म अहंकार का ज्ञान आकस्मिक कृष्ण को होने के साथ में, श्री राधा जी के साथ में कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब गोपियों का जो विरह है बड़ा दुष्कर है। कोई गोपी है वो यशोदा बनी, कोई बालकृष्ण बनी, कोई अघासुर, कोई धेनुकासुर, कोई तृणावर्त, और एक एक गोपियां के पीछे लगी हुई है। तब जाकर के गोपियों ने आक्रंद चालू किया है, जयति ते अधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र। हे कृष्ण, जब से तुम व्रज में आए हो, लक्ष्मी जी यहां व्रज की सेवा कर रही है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरणितम कल्म शापम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम विगृणंती थे। तुम्हारा कथा तो, मेरी कथा तो अमृत है, योगियों के हृदय का चिंतन है, दुखियों के लिए दुख दूर करने का निवारण है। जब एहसास हुआ कि हमारे अहंकार की वजह से श्री कृष्ण है वो यहां से अंतर ध्यान हो गए, तब जाकर के जब गोपियों ने अपने आप को शरणागति में भाव में सौंपाए, भगवत जी के एक एक चरण को आप देखिए, अहंकार किसका नहीं रहे, गर्व कियो सोई न रहो सिया राम जी से हमारे कवि दुला भाया का कहते हैं कि रावण के 10 मस्तक थे, हमारा तो एक भी मस्तक सलामत नहीं, क्यों अहंकार करे? अहंकार नहीं करो। कहते हैं कि सारा धर्म यही कहता है, सारी दुनिया के धर्म यही कहते हैं, कुरान हो, बाइबल हो, महावीर हो, बुद्ध हो, कहा कि तुम मिट जा, हम अपने आप को मिटा देने, अपने आप को मिटा देना मैंने अपने आप को शून्य कर देना है। अगर सबसे बड़ी बाधा है हमारे जीवन की तो हम अपने आप को बचा के रखते हैं। जो अपने आप को बचा के रखेगा वो अपने आप को खो देगा, मगर जो अपने आप को खो देगा वही बचेगा। ये बहुत जरूरी बात है। तुम अपने को बचाने की कोशिश मत करो, अपने को खो दो। जो अपने को खो देगा वही अपने आप में बचेगा। बहुत डार्विन है ना, उसने भी बड़ी सुंदर बात की। डार्विन ने कहा दिस ऑल लाइफ इज एन स्ट्रगल फॉर सर्वाइव, सर्वाइवल के लिए है। हिंदी में बोलते हैं अपनी रोटियां सेकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जीवन क्या हमारे सर्वाइवल के लिए है? अरे जीवन तो एक ऐसा है, चलते कुछ ना करे तो भी जीवन बहता चला जाएगा। आज सवेरे सवेरे मैंने रामजी भाई से कह रहा था, रामजी भाई तुम बड़े भगवान हो, इतने बड़े महल में रहते हो, जो भोजन हम लोग को मिलता है वही भोजन आपको मिलता है। नहीं नहीं नहीं, आपसे हमको एक सब्जी कम मिलती है। मैंने कहा अरे मेरे प्यारे, एक सब्जी तो मिलती है, कहां किसको सब्जियां मिलती है। इन एपीएमसी रोड में ये मरा बेटा रहता है, कहते हैं स्वामी जी हमारे मकान में किचन है अपना, कार पार्क, कार का जो गैरेज बिक्री किया, मेरे पास 3 गैरेज हैं तो मेरे को 3 नहीं चाहिए, तो एक मैं बिक्री करना चाहता हूं। तो पड़ोसी ने कहा मेरे को दे दो, क्योंकि मेरी 3 कार हैं, तीसरी कार रखने को जगह नहीं है, और कभी एक कार है वो पुना रहती है तो नौकर लोग रह जाएंगे। तो वो 39 लाख रुपए में दिया, एक कार रहेगी तो। खड़ा हो जाए इंसान, 2 पांव के नीचे कितनी जगह है उतनी जगह को 1 लाख रुपया लगता है। मैंने कहा राम जी भाई बड़े भगवान हो, रहने के लिए इतना बड़ा भवन है, भोजन तो आपको बढ़िया मिलता है, पंखा का बिल नहीं आता है तुम्हारे लिए, नल का बिल भी नहीं आता है, आंख खोलो तो संत दिखते हैं, और थोड़ा दूर चले जाओ तो द्वारकाधीश का हरे कृष्ण का, बाबुलनाथ का, और कभी जाकर के कहीं चुप से शांत रहना है समुद्र किनारे, अरे मुंबई में एसी भवन में रहने वाले को फिर भी अगर तुम्हारे मन में लगता है कहीं खोट, तो तुम्हारी खोट है, तुम्हारे प्रारब्ध की खोट है। हमने परसों क्या कहा, हमारे नरेंद्र भाई कहते हैं सोच को बदलो, थिंक पॉजिटिव, रेस विल फॉलो। पानी का ग्लास आधा भरा है तो उसको आधा मत कहो, उसको पूरा कहो। नीचे जो पानी भरा है बोला ऊपर हवा से भरा हुआ है, तो थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक चिंतन करने की कोशिश करो। जो मुझे प्राप्त है वो परमात्मा की कृपा का एक बहुत बड़ा एक प्रसाद मुझे प्राप्त है, क्यों हमेशा ढूंढ दूसरे को करते हो। तो यहां कहा बहुत बड़ी बाधा, हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है कि हमको संतोष नहीं है, हम अपने आप के भीतर के उस प्रकाश को अनुभव नहीं कर पाते। डार्विन ने कहा इट्स अ स्ट्रगल फॉर ए सर्वाइवल, इट इज नॉट ए स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, इट्स अ स्ट्रगल फॉर ए परफेक्शन। ये पूर्णता की ओर की हमारे जीवन की यात्रा है, वो केवल जीवन यापन करने के लिए नहीं है। वो आम करो तेम करो गमे तेम करी जीवन पूर्व करो, अरे वो तो मक्खी मच्छर खटमल के लिए है, वो कोई हमारे मानव के जीवन के लिए थोड़ा है। मानव के जीवन का तो एकमात्र हेतु है और क्या है, प्रभु की प्राप्ति। प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई बड़ा जिग-जिग करना नहीं, एक बात है हमेशा सोचना मैं तो तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, हे नाथ तुम ही मेरे नाथ हो। कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस एब्सोल्यूट अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस दैट आई एम डाइंग, थाउ आर्ट माइन, थाई विल बी डन। हे नाथ तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तेरी इच्छा के मुताबिक हो, अपनी कोई इच्छाएं नहीं हो, प्रभु की इच्छा में हमारी इच्छा को जोड़ देना, अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं। धर्म कहता है यही संकल्प तो हमें हमारे अपने आप को बचाने की चेष्टा है। सन्यासी जो है वो असुरक्षा में उतरना है। सन्यास का अर्थ है अपने को बचाने की कोशिश बंद। पता नहीं क्यों कल रात में मैंने नरेश भाई से बोल रहा था, मैंने कहा देखिए आप जो बोलते हैं ना बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका अनुभव कितना बताओ। अब 10 किताब पढ़ के प्रोफेसर के नाफिक जैसे लेक्चर तैयार करते हैं, अनुभव क्या, अनुभव करके देखो। जो श्वेता श्वेत श्वेता स्वर में कहा कि ईश्वर की संपूर्ण शरणागति, कभी आपने इस शरणागति का उपयोग किया क्या। वो हमारे मित्र के जैसे हैं, प्रेम भाव से हैं, तो उन्हें बोले स्वामी जी नहीं किया। स्वामी जी आपने किया क्या, हाँ। मैंने कहा देखो एक दिन मैंने क्या कहा, हमारी ट्रस्टी मीटिंग और बोर्ड मीटिंग में कहा ये लो चाबी, अब मैं चाहता हूं आप संभालो, और ऐसे करके जेब में क्या था केवल यही था, मोबाइल भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, अभी यहां तो दो माला है, वो तो दो माला भी नहीं थी, ये एक ही था। टेलीफोन किया वहां से ऑफिस में से गेट के ऊपर, एक रिक्शा भेजो रेलवे स्टेशन जाएंगे। रिक्शा आ गई तो रेलवे स्टेशन में जाने के लिए रिक्शा में बैठा, आश्रम से बाहर निकला तो बोला हे भाई रेलवे स्टेशन नहीं चलना, बस अड्डे चलो। तो ट्रस्टियों ने तो सुना था कि रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो कुछ देर तो सोच नहीं पाए क्या हुआ मेरे को पता नहीं, रुचि भी नहीं जानने के लिए, एक मन में एक ऐसी बस वो प्रभु है उसके नाम से चलना। फिर उसको कहा ऐसा कर प्राइवेट अड्डा में चल, पब्लिक में नहीं। वो जयपुर के बस में जाने के लिए कहा भाई बस में कितना रुपया लगता है, बोलता है 220 रुपया लगेगा। अच्छा ठीक है तुम्हारा मोबाइल फोन दे, मोबाइल फोन लगाया जयपुर में हमारे दोस्त की धर्मपत्नी को, कल्पना जी मैं फला फला बस से आ रहा हूं कांसा कोठी में उतरूंगा, उसको 350 रुपया देना है, सवेरे वहां से मुझे पिकअप करना, रुपया भी लेके आना। वो मेरा मुंह देख रहा है मैं 220 बोल रहा हूं, 350 क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने बोला 50 रुपया रिक्शा वाले को दे दे भाई, हाँ क्योंकि उसको तो देना तो पड़ेगा ना, उसको दे दिया, उसने मेरे को जगह दे दी। वो उसको पता हो गया बाबा जी के पास पैसा नहीं है, रात में मेरे को किसी ढाबे में उसने दो टिकट भी खिला दिए, ऐसा करके एक प्याज भी खिला दिया और काली दाल भी खिला दी, खुश हो गए। मैंने सवेरे वो कल्पना 350 रुपया उसको दे दिए। समझिए, मैंने सोचा कि कोई विदेशी लोग आपके साथ में आ रहे हैं, आपका सब सामान कहा? मैंने कहा यही सामान है। बड़ी समझदार बेटिया है, अपने घर ले गई। समझिए, आराम से आप रहिए, फिर मैं थोड़ा दिन चढ़े उठेंगे, इतना जल्दी जल्दी नहीं उठ जाना। अभी रात भर आप बैठे होंगे, ठंडी भी बहुत, नवंबर का महीना था। अभी वो मेरे कमरे में तौलिया रख दिए, टूथपेस्ट ब्रश साबुन सब रख दिए। सबरे हमारे उठने के पहले पहले तक वो बाजार से ऐसा ऐसा 4 धोती और 2 कुर्ता सिलवा के ले आई, मुझे गोविंद जी के मंदिर में लेके गई। हमारे निवृत्त गवर्नर है, वहां लेके गई, 2-3 भक्तों के पास लेके गई। शाम होते होते मेरे जेब में 7,000 रुपया भी हो गया था। मैंने कहा कल हम दिल्ली जाएंगे, बस में ठीक करो। तो क्यों, बस में क्यों जाएंगे, हम आपको छोड़ देंगे। तो लेके गई एयरपोर्ट, वहां से मेरे को टिकट बना दिया लखनऊ जाने के लिए। लखनऊ में हमारे दोस्त आए हुए थे, मॉरिशियस के प्रेसिडेंट, उनके साथ में मैं 3 दिन रहा सरकार का, और टीवी में भी आ गया, अखबार में आ गया, तब अहमदाबाद में पता हो गया महाराज लखनऊ में है। लखनऊ में वो हमारे पहचान वालों को पूछे, तब तक हम लखनऊ छोड़ दिए, बस हैदराबाद चले गए। फिर वहां से हैदराबाद से हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में फक्कड़ रहे, किसी ने कंबल दे दिया है, किसी ने शॉल दे दिया है, किसी ने मोजे दे दिए। तब जाकर के 3 हफ्ते के बाद में स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने हमको मंडली के बीच में भिक्षा लेते हुए देखा, दाढ़ी बाड़ी बड़ी हुई है। बोले ये रे, तुमको वहां इतना पागलों की तरह ढूंढ रहे, तुम यहां कहां घूम रहे हो? बोला क्यों, क्या बात है, जैसे महात्मा होना चाहिए वैसा ही हो, करतल भिक्षा तरतल वास। 3 महीने काटे, वाह, वजन कमती नहीं हुआ, बढ़ गया क्या कुछ है? क्या महात्मा को 3 काम करना है, एक भिक्षा, भोजन किया तो शौच, तीसरा भगवान का नाम। ये मौज थी। 8 बजे सो जाते थे, रात 1 बजे उठ जाते थे, बस दिन में 500 माला जप कर लेते थे, भगवत गीता का पूरा पारायण करते थे, दुर्गा सप्तशती का पारायण करते थे, विष्णु सहस्र नाम का पारायण करते थे। 1 घंटा सुबह पूर्व में चल लेते थे, 1 घंटा शाम को पश्चिम में चल लेते थे, गंगा में 2 दफे स्नान करते थे। क्या मस्त जीवन था, क्यों? वो शरणागति का प्रभु की श्रद्धा में समर्पित जीवन। बहुत जरूरी बात है, हम अपने आप को एक अनुभव करें। एक ज्ञान जो होता है, ये गीता जो है, मुझे दिनकर ने कल एक कागज दिया है, कुछ लिख करके देना, वो आपके चैनल दिखाते हैं ना, उसके लिए लिखो। गीता है, उनके अर्थ क्या होते हैं? गीता का अर्थ होता है, एक तो वाच्यार्थ, जैसा लिखा है वैसा पढ़ा जाए, एक होता है तात्पर्य अर्थ, और तीसरा होता है शास्त्रार्थ, किंतु चौथा सबसे बड़ा होता है अनुभव जन्य ज्ञान। जो अनुभव किया है वो तुम बोलो। तो जब हम वेद पढ़ाते हैं, जब हम उपनिषद पढ़ाते हैं, तो तोते के जैसे बोलने से वाहवा तो हो जाएगी, हमारे दिल में दिमाग में अंदर में कितना जाएगा? हमारी हर वाणी है वो हमारे श्रोताओं को, हम श्रोता ना देखे, वो मुमुक्षु मेरा हाथ पकड़ करके, मैं उनका हाथ पकड़ करके, हम तमाम एक दूसरे के साथ में परमात्मा के प्रति आरोहण कर रहे हैं। निश्चित ही अहंकार अगर कोई संगीत बनाए तो क्या हो जाएगा पता है? जूतों की आवाज आएगी। आपने देखा है ये पुलिस वाले के सिर में ठाप 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 ठाप, ये अहंकार का संगीत ऐसे ही होगा। कृष्ण का संगीत ऐसे नहीं होता है। आपको पता है विथोबन नाम सुना है आपने? बाक, बाक और विथोबन बहुत बड़े संगीतकार हुए, किंतु बहरे थे, गूंगे थे, न सुनते थे न बोलते थे, और उनका संगीत, आप सदियां बीत गई, आज तक उनके जैसा संगीत कोई नहीं बजा पाया। सूरदास देखते नहीं थे, किंतु सूरदास की संपूर्ण शरणागति थी। सूरदास जब छोटे रहे तो उनके पिता उनको पढ़ाते नहीं थे, पंडित थे, मां केवल लंगोटी बांध देती थी, उनके अपने भाई बहन उनकी चोटियां खींचते थे। सूरदास तंग थे, भोजन मांगे तो मां बोलती थी अंधा गई का, दिन भर खाने के सिवा कुछ काम नहीं है, मरता क्यों नहीं है? मां कहती थी, पिता पढ़ाते नहीं, उसके भाई बहन उनकी चोटियां खींचते। तंग वो बालक सूरदास है, किसी साधु की मंडली में चला गया। साधु की मंडली में गया तो साधु ने सोचा ये अंधा कहां से आ गया, उसको सोता हुआ छोड़ के साधु भी भाग गए। बहुत रोए सूरदास, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध की पहरी पैंजनी, कंठ ऋषय की माल। इतना दुख था सूरदास को, मैं क्या करूं। श्री 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 आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुना कि कृष्ण का भक्त है, ये कृष्ण का भक्त आक्रंद करता है, आए उनको मंत्र दिया है ब्रह्म संबंध। तो ये दुनिया के संबंध को विच्छेद कर, क्या कहा उनको, दो शब्द कहे थे, केवल छोड़ो जोड़ो, इनको छोड़ दो उससे जोड़ दो, तुम अपनी वेदना अपनी व्याधि अपना हृदय है केवल परमात्मा में लगा, आओ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ू। गुरु ने हाथ पकड़ा है, हम गुरु का हाथ पकड़े और गुरु हमारा हाथ पकड़े, ये दोनों भिन्न होता है। एक मां है बच्चे का हाथ पकड़े और बच्चा मां का हाथ पकड़े, दोनों को भेद है। मेले में जाए अगर बच्चे ने मां का हाथ पकड़ा है छूट सकता है, किंतु मां ने पकड़ा तो वो नहीं छूटे। गुरु ने हाथ पकड़ा, बाकी बिहारी जी के मंदिर में लाके सूरदास जी के गुरु जी आचार्य श्री चरण महाप्रभु जी, मैं तो आंखों से देखता नहीं, मैं क्या करूंगा। चिंता मत करो, वो तो तुम्हें देखते हैं ना। और सूरदास जी ने जो सबसे पहला पद गाया है बड़ा अद्भुत है, इतना सुंदर दृश्य बाल्यकाल में हुआ है। क्या कहा है, नवनीत लिए, भगवान है हाथ में नवनीत, घुटू रन चलत, वो घुटू में चल रहे हैं। क्या कहा, गोरोचन तिलक किए, वो गाय के रोचन है उसका तिलक किया। इतना अद्भुत दर्शन, ये मंदिर में सबसे बड़ा कोई मुश्किल होता है ना, मंदिर का पुजारी होता है, वो समझता है मैं एडीसी हूं, मेरी इच्छा से भगवान चलते हैं। तो उन लोगों ने सोचा ये अंधा आदमी है, कैसे करके गा लेता है, क्योंकि भगवान की जैसी झांकी है वैसा ही वर्णन करते थे। पीतो वसन तन धार्यो मुरारी, आज पीला श्रृंगार किया है, कमलन के छाव बैठे नंदराय, आज कमल का श्रृंगार तो ऐसा गाएंगे। एक दिन श्रृंगार के दर्शन में पुजारी लोगों ने ठाकुर जी को केवल लंगोटी बांध के खड़ा कर दिया। अब देखते हैं अंधा क्या करता है, क्या बोलता है देखो। तो बोलने लगे, काहे ढाढ़े नंग धड़ंग, काहे रूठी आज रानी ठाकुर के ये ढंग, आज क्यों नंगे खड़े हो ठाकुर, लक्ष्मी रूठी है क्या, ये क्या हो गया। उन्होंने अपने आप को शरणागति को स्वीकार किया, अपने आप को शून्य कर दिया। वो क्या कहा, अंधा देखे लंगड़ा चलकत पहुंचत काशी रे, ये अगर आपने शरणागति को स्वीकार किया है। अहंकार का संगीत है ना, वो संगीत जूतों के ढाप के जैसे होता है, ढाप 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 ढाप, बोलने वाला कर्कस हो जाता है, अहंकार से बोलता है। विनम्र हो जाओ, माधुर्य से भर जाओगे। कृष्ण कहते हैं कि संकल्प जहां है वहां अहंकार है। कृष्ण कहते हैं कि अहंकार की दौड़ जो है बेहताशा है, यू डोंट नो वेर यू आर गोइंग, कहां जा रहे हो तुम्हें पता नहीं है, कहां कहीं टकराओगे भटक जाओगे। कृष्ण अर्जुन से बहुत स्पष्टता से कहते हैं, संकल्प का अर्थ है इच्छा में आपने अहंकार को जोड़ा नहीं, अहंकार की जड़ें पकड़ ली। लेट एनीथिंग में हैपन, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये क्या कहते हैं 13वें अध्याय में। देखिए भाई, आप अपने आप को दम्भ से छोड़ो, मान नहीं मानो। ये हमारे श्री 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 चैतन्य महाप्रभु जी ने अष्टपदी में कहा, क्या कहा कि अमानिनान मान देन कीर्तनीय सदा हरे, तृणाद अपि सुनी चेना तरोरी व सहिष्णुना, तिनके से भी ज्यादा सरल बन करके रहो, तिनके से भी ज्यादा सरल बन करके रहो। तरोरी व सहिष्णुना, पेड़ में कितनी सहिष्णुता है, पेड़ को कितना कुठाराघात करे। ये आपने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कथा तो सुनी होगी कि वो जंगल में कहीं शिकार करने गए थे, वहां कोई एक पहाड़ का कोई बाजार का कोई बालक रहा, उसने आम तोड़ने के लिए गिलोल से पत्थर मारा, आम को नहीं लगा, गुरु गोविंद सिंह के सिर में लग गया। जब लग गया तो सिपाही लोग उस बच्चे को पकड़ के लाए, लगा कि इसको तो मार पड़ेगी, हमको इनाम मिलेगा। तो उन्होंने बड़ी शांति से पूछा, बेटे तूने पत्थर क्यों फेंका था? बोले महाराज मैंने आपके लिए नहीं फेंका, मुझे ध्यान नहीं आप बैठे, मैंने तो आम तोड़ने के लिए फेंका था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी अंगूठी निकाल के उसको दी। अब सेवक बड़ी मुश्किल में आ गए, हमने तो सोचा था हमें इनाम मिलेगा, इस बच्चे को अंगूठी मिल गई, क्या बात क्या है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा एक वो जिसमें चैतन्य हमसे कहीं गुना कम है वो भी पत्थर की मार में आम दे सकता है, तो मैं यहां का बादशाह, अगर मेरे को पत्थर लगे तो मुझे अंगूठी से कम तो क्या देना चाहिए। तो अपने आप को सोचो, इस ढंग से जब सोच हो जाएगी तो हम सोच एक ऐसी ऊपर में हो जाएंगे। वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास में एक बूढ़ा आदमी आया, महाराज मुझे आपकी सेवा में रखो, अब जो युद्ध कर रहे हैं वो धर्म युद्ध है, उस धर्म युद्ध में मुझे भी शामिल करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देखा ऐसे, तुम क्या करोगे? महाराज तुझी जड़ा दसो, अब जो कहो ऐसा करो, घायल जो सैनिक है उनको जल पिलाओ। ठीक है जी, बड़ा जी हुकम जी। तो वो लेकर के जितने घायल सैनिक है उनको जल पिलाता था, उनका नाम था वो भाई। वो भाई ये क्या करता था, न केवल अपने किंतु दुश्मन के घायल सैनिकों को भी जल पिलाता था। तीन चार दिन होते होते लोग तंग आ गए, एक केड़ा बंदा है भाई, हैं? ओ भाई तू की घबरा पा, तू क्या करता क्या है भाई? गुरु ने दसिया है जो घायल है उनको जल पिलाओ, गुरु ने कहा है घायल है उसको जल पिलाओ, ये तो नहीं कहा कि इसको पिलाओ उसको नहीं पिलाओ, गुरु के हुक्म को पालन करता हूं। तो गुरु जी के पास ले गए, बादशाह जी ये दरसो उनकी गर्दा है। गुरु ने कहा बिल्कुल ठीक कर रहा है, घायल तो घायल होता है, वो कैसा भी रहे, इस पक्ष का उस पक्ष का ये गौण है, किंतु मैं अपने अहंकार को छोड़ करके घायल को घायल देखता हूं। रेडक्रॉस तो रेडक्रॉस है, डॉक्टर के लिए डॉक्टर तो डॉक्टर है, वो कौन से मोहल्ले का मरीज है, वो हिंदू है कि मुसलमान है, पुरुष है कि स्त्री है, वो उसको कोई नहीं है। मेरे पास आने वाला हमारे यहां डॉक्टर अमीन है, हमारे बड़े अच्छे योग शिक्षक है, सरकारी अधिकारी भी है, वो कहते हैं मेरी क्लिनिक में मुझे कभी कोई तंग नहीं हुई, क्योंकि उनका जो क्लिनिक है पूरे मुसलमान बस्ती में है। जब पूरा अहमदाबाद मुसलमान में जल रहा था, डॉक्टर अमीन एवरीडे इज टू गो टू द हॉस्पिटल, मैं इंचार्ज हूं मैं क्या करूं स्वामी जी, मगर वो मुसलमान बच्चे हैं वो अपनी गाड़ी में इनको लेके जाते थे, गाड़ी में छोड़ के आते थे। बताइए क्यों? बोले डॉक्टर साहब आप जो सेवा कर रहे हैं ना उस सेवा को आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो घायल होने वाले तो हिंदू तो थे, मुसलमान का मोहल्ला है तो मुसलमान लोग भी अधिक थे, किंतु डॉक्टर हिंदू होते हुए उनको नहीं मारना है, क्यों? ये कितने साल से हमारी सेवा कर रहा है। तो ये जो उदारता कब आती है, ये सरलता कब आ जाती है, ये भेद कब मिट जाता है? जब अपने आप को हम शून्य कर देते हैं, हम इच्छा से परे हो जाते हैं, हम संकल्प से परे हो जाते हैं, हम अहंकार से परे हो जाते हैं, मैं और तू के भेद से छल से परे हो जाते हैं, तब जाकर के हमारा आत्म संयम क्या कहता है, हमारे भीतर जो चेतना है वही चेतना सर्वत्र है। ये बहुत जरूरी बात है इस वस्तु को समझने के लिए कि भीतर का हमारा एक स्वर रहता है। अब एक बार कोशिश तो करो, कोशिश कर लो अपने आप को, आज मुझे कोई भी संकल्प नहीं करना है, आज मुझे कोई भी इच्छा नहीं करना है, करके देखो आप। एक दिन सुबह 6 बजे से दूसरे दिन सवेरे 6 बजे तक दो कारण होगा, या तो पागल हो जाएंगे, सिर दर्द हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं तो इतने हल्के हो जाओगे, इतने हल्के हो जाओगे, ये फूलों की तरह रहोगे, फिर वो आपके 24 घंटे कभी नहीं पूरे होंगे, फिर लगेगा कि ये जो आनंद है वो आनंद जीवन भर का आनंद है। एक बार करके देख लो, बहुत आनंद है। वो जो मैं चाबी है ना छोड़ के गया ना, हमारे गुरुदेव हैं वो स्वामी चिदानंद जी महाराज फोन किए, तुम क्या कर रहे हो भाई, वापस जाओ, रोज दो दो घंटा फोन करके मेरे को बोले वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। मैंने कहा स्वामी जी अमृत के कुंभ से आप मेरे को उठा करके फिर वही गंध में डाल रहे हो, फिर वहां जाएंगे वही टेलीफोन करो, आटा करो और चीनी करो और हींग जीरा मेथी, फिर वही सब हो जाएगा, क्या करना है साधु का जीवन। नहीं नहीं वो सही बात है, यू जस्ट प्लीज गो बैक, पीपल आर वरिंग अबाउट इट। तो गुरु की आज्ञा है तो करना, नहीं तो एक बार करके देख लो मैं कुछ नहीं हूं। एक बार सोच लो, कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, जैमनी चलाओ तैमनी चले, जैसे चलाओ वैसे चलो। आमी रथ हो तुम्ही रथी, आमी जंत्र हो तुम्ही जंत्री, मैं रथ हूं रथ को चलाने वाले तुम हो, मैं यंत्र हूं मेरे यंत्र को चलाने वाले आप हो। यंत्रवत परिवर्तन्ती सुखानी च दुखानी च, जैसे कि एक मेरीगोराउंड में बैठ जाते हैं, नीचे वाला ऊपर जाता है ऊपर वाला नीचे, तो ऐसे ही जीवन में वो कठपुतली के जैसे, कठपुतली वाला ऊपर से राजा को लड़ाता है, रानी को लड़ाता है, वजीर को लड़ाता है, उसकी इच्छा है उसको गिरा देता है, इच्छा है उसको पकड़ लेता है। वैसे ही हमारी डोरियां पकड़ के रखी है। फिर आप प्रश्न पूछेंगे, महाराज अगर उसने डोरी तो हमको क्या करना? कुछ नहीं करना, तुम खाली बैठे रहे, बैठे रहो, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। एक मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठते थे, कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, कहीं भी जाते नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जो कहानी है ना, चलो सांभिए, स्वामी जी वार्ता कहे छे, ऐसा छोटा एक किताब है, रामकृष्ण आश्रम राजकोट का, उसमें पढ़ा कि वो एक महात्मा मंदिर के बाहर बैठते, कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, चुप से बैठते, कहीं जाते नहीं, किसी ने उनको वहां से उठते देखा नहीं। मंदिर के पुजारी थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे, वो एक पूरी पत्तल ला करके उनके सामने रख देते थे, तो ये खा लेता, पत्तल भी नहीं उठाता है बंदा, ये वो पत्तल भी पड़ी रहेगी, हवा भी उड़ जाएगी तो कोई उठा के लेके जाएगा। और इयर्स टुगेदर, एजस, कितने दिन तक ऐसे ही चलता रहा। अब होता पुजारी बूढ़े होकर के मर गए, महात्मा वैसे के वैसे रह गए। अब पुजारी का बेटा वहां पर पुजारी हो गया, उसको पता था पिताजी इनको भोजन देते, तो उसने एक दिन तो दे दिया, दूसरे दिन देते, महाराज जी आप यहां बैठे रहते हो, कितना साल से बैठते हो? वो महात्मा कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। देखिए मैं आज तो आपको खाना देता हूं, कल से नहीं दूंगा, बैठना नहीं है अब हमारे साथ। इतने साल उनके पिता भोजन दे रहे थे, अभी ये है बच्चा एक दिन में तंग है, कल नहीं दूंगा खाना, उसने नहीं दिया। वो महात्मा बैठे रहे, नहीं घटे वहां से। तीसरे दिन वो हटके आया, एक बाल्टी पानी उस पर गिर दिया, कल आपको खाना नहीं दिया, हटने के लिए कहा, हटते क्यों नहीं हो, समझते क्या हो? बोले ओ बाबा जी कुछ नहीं बोले, तो वो डंडा लेके आ गया। अरे बड़ा ढीठ है तू रे, कुछ करता धरता नहीं, खाली बैठा रहता है, कुछ किया कर? तो महात्मा ने कहा मेरे साथ में आके बैठ जा, मेरे साथ में आकर के बैठ जा। पहली बार बोले क्या करना है? जो मैं कर रहा हूं, क्या कर रहे तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं करके तू बैठ तो देख, बैठ जा, तेरे को भी खाना मिल जाएगा, बैठ। क्या होता है उसमें? ऐसा करके बैठ गया। फिर ऐसे दो मिनट में सिर खुजला रहा है, पांव लंबे कर रहा है, दाहिने देख रहा है, बाएं, घंटा भरते होते तो उब गया वो। तो क्या हो गया? मैं नहीं बैठ सकता। तो तू मुझे क्यों कह रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तो कर के देख, बहुत बड़ी साधना है, मौन हो जा, चुप हो जा, आनंद में हो जाओ, ये अपने आप के भीतर में खो जाओ। कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई अहंकार नहीं। जैसे कि यथा काष्टम च काष्टम च, आजकल बंद हो गया है। पहले पहले हम ऋषिकेश गए 1965 की बात, तो उन दिनों में जंगल में लकड़ियां काट करके उसको स्लीपर बनाकर गंगा में पटक देते थे, तो बह करके रायवाला तक आ जाती थी, राम पंजवानी के लोग उनको निकाल लेते थे। तो लकड़ियां बह के आती है, ऐसे तुम परमात्मा की इस ज्ञान की नदी में, संसार की नदी में बहते चले जा। उनको जहां लगाना है किनारे लगा देंगे, किनारे से हटाना तो हटा देंगे, क्या फर्क क्या पड़ता है? तो अपना अहंकार नहीं रहेगा, अपनी वासनाएं तृष्णाएं नहीं रहेंगी, हम अपनम सरल हो जाएंगे। और यह असंभव नहीं है, मुश्किल क्या है? अपने आप को पकड़ के रखा है। देखिए ये जीव है, जीव ये जीव है, हम पैदा हुए तब साथ में आई, मरने तक साथ में रहेगी। दांत बाद में आए, दांत पहले जाएंगे। क्यों? दांत अकड़ है, दांत की अकड़ बहुत है, दांत में अहंकार बहुत है, खक 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 करते हैं, इसलिए दांत जल्दी टूटते हैं, अहंकारी पहले टूट जाएगा। ये एक पेड़ रहा नदी के किनारे, ऊंचा सा हो गया है, नीचे घास भी थी, दूब थी, हवा चलती तो दूब ऐसे होती है, पेड़ डर रहता है, वो दूब को बोलता था, तो क्या समझता है अपने आप को? मुझे देखता नहीं है, मैं कितना ऊंचा हूं, वो दुब हस्ती थी। देखिए ईश्वर ने जैसे बनाया हम उसी में खुश है। पेड़ रोज बोलता था इतनी छोटी है मेरे सामने खड़ी है, क्या है तेरी औकात, क्या है तेरी, देख मेरे को देख। एक दिन बाढ़ आ गई, पेड़ जड़ से उखड़ गया, दूब है वहीं की वहीं रह गई। जब धूप खुली देखा पेड़ नहीं था, धूप तो थी वहां पर। अकड़ कहेंगे उठ जाएंगे, अहंकार करेंगे टूट जाएंगे। जितना हो सरल बनने की कोशिश करो। हमारे दोष लोकों में परमात्मा ने जीवन की जो विधा है, जीवन की जो नीति है, जीवन की जो दृष्टि है, जीवन का जो अभिगम है, एक इच्छा को त्याग करो, संकल्प का त्याग करो। जिसमें इच्छा नहीं है वह सन्यासी है, जिसमें संकल्प नहीं वह योगी है, और जिसको इच्छा संकल्प दोनों नहीं तो अहंकार का प्रश्न ही नहीं है। तब जाकर के तुम एक ऐसे मुमुक्ष हो जाओगे कि जो अपने आप में एक नई चेतना को प्राप्त हो जाएगा। अब आइए हम तीसरे श्लोक को भी आज पढ़ लेते हैं। तीसरे श्लोक को कृपया करके पढ़िए। ओम आरुरुक्षोर्मुने योगम, आरुरुक्षोर्मुने योगम, कर्म कारणमुच्यते, कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव, योगारूढस्य तस्यैव, शमः कारणमुच्यते, शमः कारणम्। आरुरुक्षोर्मुने योगम्, आरुरुक्षोर्मुने, कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव, रूढस्य तस्यैव, शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षो मुने योगम्, आरुरुक्षः विसर्ग के कारण, मुने योगम्, कर्म कारणम् उच्यते, योगारूढस्य तस्यैव, शमः कारणम् उच्यते। और समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु है। योगारूढ़ मैंने क्या है, जो योग में निमज्ज है। योग में क्या निमज्ज है, उसको संकल्प नहीं है तो योग में निमज्ज है, अगर संकल्प है तो योगी नहीं है, विकल्प है तो योगी नहीं है। वो कैसा है, वो छीछला पानी है समुद्र के सामने, समुद्र के सामने लहर आती है जाती है, समुद्र के बीच में चले जाओ कोई लहर नहीं है, शांत, चलो दूर तक देखो किनारे में है। किनारे में क्या होता है, छीछला होता है। हमारी साधना का आरंभ तो ऐसा ही होगा, लहरें होंगी, किंतु जब मध्य अवधि में चले जाओगे एक गहन गहराई में, तब जाकर के योगारूढ़ हो जाओगे। देखिए बहुत जरूरी बात है इसको समझना, 8:30 हैं, अपनी बातें नहीं कहना किंतु अनुभव से कहेंगे। कभी भी हम उड़ीसा गए तो हमेशा 10-20-50 लोग साथ में रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि वहां पर ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई, ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक नहीं चलेगी। हवाई एयरपोर्ट में कोई लेने के लिए आया सवेरे की फ्लाइट से, बड़े महाराज जी दूसरी दिशा से आ रहे थे, हम दूसरी दिशा से आए थे। बोले कि महाराज जी की फ्लाइट दोपहर 3 बजे है, तो 3 बजे के बाद में हम लोग फिर जहां जाना है वहां पर जाएंगे। हमने कहा ठीक बात है भाई, तो मैं क्या करूंगा, अभी तो सवेरे 6 बजे आए, तो मुझे एक टैक्सी कर दो, मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ जाऊंगा। अकेले रहो ना तो बहुत अच्छा होता है, 2-4 लोग रहो तो सबकी सोचनी पड़ती है। हम साधु लोग हमेशा बोलते हैं, 1 निरंजन, 2 गड़बड़, 3 लड़बड़, 4 चौपट। एक रहे तो बड़ा मस्त में रहेगा। तो हम ठाकुर जी के सामने दूर खड़े रहे, हमको भीड़ भड़कके में जाने के नहीं, उधर एकदम पीछे खंबे के पास में। और जो विचार आया, कहा क्या बात है, हम चैतन्य ना सही तो ना ही सही, हम मीरा ना सही तो ना ही सही, किंतु फिर भी बहुत ऊंचे नहीं तो बहुत नालायक तो नहीं है, मध्य तो है। तो कभी भी तेरे मन में नहीं होता है हम तेरे दर पे आते हैं, तो कभी मेरे दर पे तो आया कर। तो सबको आलिंगन देता है तो कभी हमको भी आलिंगन दे, हमको भी प्यार दे। ऐसे मन में बौखलाते बौखलाते विचार में घंटा डेढ़ घंटा खड़ा होकर चलो समुद्र में नहा के आते। वो ड्राइवर ने कहा इधर नहीं नहाना, उधर पानी का वेग ज्यादा है। हमने कहा हम भीड़ में नहाते नहीं, हम अकेले नहाते हैं, तो तुम यहां गाड़ी खड़ा करो, हम अकेले जाएंगे। कपड़े कार में ही रखे, अकेले चले गए। तो समुद्र कोई हमारे लिए नया नहीं है, तैरना तो समुद्र में सीखे थे। पुरी का समुद्र है वो इतना रफ नहीं है जितना सोमनाथ का है। तो हमने पुरी के समुद्र में नहाए, लगा कि हमको पानी खींच रहा है, खींच रहा है, खींचता चला गया। ऐसा दो तीन मील तक अंदर चले गए, अब डुबकी लगा करके देख रहे हैं नीचे पांव नहीं लग रहे, कितनी कोशिश करे वापस आने के लिए नहीं आ रहे। हठात से हंसी आ गई, हमने कहा अरे छलिया तेरा आलिंगन करने का यही ढंग है क्या, इसे क्या तेरे को लग रहा है, क्या हम तो उसको छोड़ देंगे, मुझे पता है यही तेरा ढंग है सोचने के लिए। इट वॉज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाहर कैसे निकलना, जितना बाहर निकलने के पहले प्रयत्न करो उतना ही अंदर खींचे चले आते। समुद्र का तो ये नियम नहीं है, समुद्र में कुछ भी अंदर डाला जाए वो फिर वापस बाहर आ ही जाता है, किंतु ये नियम के अतिरिक्त नियम के विरुद्ध कर रहा था। जब पूरे दिल से कह दिया छलिया ये आलिंगन बहुत कड़ा है, अब सह नहीं होता है। क्यों? एक जीने की इच्छा आ गई, जीने के लिए एक इच्छा आ गई, बाहर जाने के लिए संकल्प बन गया, अपने शरीर का अहंकार हो गया, तो परमात्मा का प्रेम छूट गया। एक जोर का ढेव, बांग्ला में ढेव बोलते हैं, एक इतना जोर का एक मोजा एक भर्ती का आ गया, बस तीन दफे गुलाट मार के बाहर फेंक दिया। वो मछुए सब दौड़ करके आ गए, तुमने पागलपन कर रहे हो अंदर तक क्यों गए थे, लिख करके दो हमने आपको बाहर निकाला है। अरे मैंने बोला जो ले गया था उसी ने बाहर निकाला है भाई, तुम क्यों बोलते हो, तुम कहो तो मैं तो कुछ भी लिख दूंगा, मगर ये बात सही नहीं है। सही तो वही है जो ले गया था वही गया था, जो ले गया था वही गया था, और उसी ने अपने आप को बाहर निकाला है। ये अहंकार जितने आप शरणागति को स्वीकारो यू विल एक्सपीरियंस कि वही आपका हाथ पकड़ रहा है। आप नहीं चलते हो फिर वही चलेगा, फिर वही बोलेगा, आप नहीं सुनते हो आपकी अवस्था हो जाएगी जैसे बांस की पोरी होती है, जो राग सुनना है वो फूंक भी वही अपने आप मार लेगा और राग भी वही सुना लेगा। वही बांस की पोरी है, वही बजाने वाला है, वही सुनने वाला है, वही संगीत है, वही राग है। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है, वही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये जब बात समझ में आएंगी इसके बाद में कोई संयम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल वहां आत्मा ही आत्मा रह जाएगा। ओम शांति।